Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kenopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmananda Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Aur vastu se bhi parichinna nahi hai. Yadi gyata अपना ज्ञेय बना करके परमात्मा के उस स्वरूप को समझेगा, अपने से भिन्न समझेगा, तो ज्ञाता उससे भिन्न है तो ज्ञाता का भेद ही उसमें रहेगा, परिच्छेद, तो वस्तुकृत परिच्छिन्न हो जाएगा, वस्तुतः परिच्छिन्न हो जाएगा। लेकिन आचार्य ने तो देश से, काल से और वस्तु से अपरिच्छिन्न सर्वात्मा के रूप में वर्णन किया है, और उस वर्णित स्वरूप को यदि कोई अपना दृश्य बना करके अपने से अलग विषय के रूप में जानता है, तो आचार्य ने कहा वो चाहे मनुष्य का ज्ञान हो या देवताओं को होने वाला ज्ञान हो परमात्मा का, अपने से भिन्न विषय तया वह परिच्छिन्न ही ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। और ऐसा ही ज्ञान यदि आचार्य शिष्य को कहते हैं तुम्हारा है, तो निश्चित ही अभी मैंने तुम्हें जिस वस्तु का उपदेश किया परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का, तद विषय तुम्हें विचार करना जरूरी है। मीमांसम ये वते ते यानि तुम्हें, मीमांसम यानि विचार करने योग्य है, तुम अभी विचार की आवश्यकता है परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का। सम्यक ज्ञान जिस प्रकार हो ऐसा विचार अपेक्षित है। ये मीमांसम एव तत् इस वाक्य से शिष्य ने जैसे आचार्य से सुना कि अभी हमें विचार की आवश्यकता है, जो विषयतया मैं समझ रहा हूं परमात्मा को, वह मेरा ज्ञान परमात्मा के अपरिच्छिन्न स्वरूप विषयक नहीं है, अल्पक स्वरूप विषयक है। तो आचार्य की इस प्रेरणा को पा करके शिष्य आचार्य को प्रणाम करके एकांत में जाता है, और एकांत में बैठ करके पूर्व में जो उपदेश किया आचार्य ने, अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, इसी वाक्यार्थ का अच्छी तरह से विचार करता है एकांत में बैठ करके, यानी मनन करता है, निधिध्यासन करता है, और मनन निधिध्यासन करके, मनन तथा निधिध्यासन के द्वारा निवर्त्य जो दोष है बुद्धि में, उन दोषों की जैसे ही निवृत्ति होती है शिष्य के बुद्धिस्थ दोषों की, बुद्धि सारे आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोषों से रहित हो जाती है। तो शिष्य को अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इस वाक्यार्थ का सम्यक ज्ञान होता है, और इस वाक्यार्थ का सम्यक ज्ञान माना जाएगा कि अनात्म वस्तु जो विदित है तथा अविदित है उससे अलग चेतन परमात्मा है और वो मैं हूं। इस वाक्यार्थ का मैं के रूप में शिष्य को बोध हुआ। जैसा अज्ञानी को मैं के रूप में शरीरादि का बोध होता है, ऐसा दृढ़ आत्म साक्षात्कार शिष्य को हुआ, और फिर ये जो मैं के रूप में, आत्मा के रूप में परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव है, ये शिष्य आचार्य के अनुभव के साथ मिलता है कि नहीं, और शास्त्र जैसा स्वरूप बता रहा है वैसा ही ये मुझे ज्ञान है कि नहीं, इसे दृढ़ करने के लिए, मिलाने के लिए, कि आचार्य जब किसी को भी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा, तो चाहे वो मनुष्य को हो या देवता को हो, वो सब का ज्ञान एक रूप रहेगा, एकाकार होगा, क्योंकि ज्ञान होता है विषय के अनुसार, वस्तुतंत्र। और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक है, और उस वास्तविक स्वरूप का जब कभी किसी को ज्ञान होगा तो उस ज्ञान में कोई विशेषता नहीं रहेगी कि गुरु का ज्ञान कोई अलग, शिष्य का ज्ञान अलग, और देवता को अलग। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का जिस किसी को भी ज्ञान हो वह एकाकार रहेगा, क्योंकि ज्ञान में विशेषता यानी भेद सिद्ध करने वाला होता है विषय। विषय के भेद से ज्ञान में भेद होता है। घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, मठ का ज्ञान, ये ज्ञान अलग अलग क्यों है? उसके विषय घटादि अलग अलग होने से। लेकिन जो विदित अविदित से अतिरिक्त चेतन आत्मा है वह तो एक होने से, अनेक न होने से, जिस किसी को भी ज्ञान होगा तो एकाकार ज्ञान होगा, सबका एक जैसा होगा। तो शिष्य को विचार से जो अनुभव हुआ उस अनुभव को आचार्य के अनुभव के साथ मिलाने के लिए, आचार्य के अनुभव के तरह ही ये मेरा अनुभव है ऐसा निर्धारित करने के लिए आचार्य के पास जाता है शिष्य, और आचार्य को बताता है कि मन्ये विदितम्। हे आचार्य प्रवर, मैं ये मानता हूं कि अभी तक तो सुविदित मानता था मैं, कि मैं ब्रह्म को विषयतया अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन अब जब आपने मेरी बुद्धि को, बुद्धि की परीक्षा ली, थोड़ा विचलित किया, और आपकी प्रेरणा से मैंने तत्व का अच्छी तरह से विचार किया, और विचार करके जो अनुभव प्राप्त किया उसे आपके अनुभव के साथ मिलाने के लिए, शास्त्र सम्मत ये अनुभव है ये निर्धारित करने के लिए मैं आपको कहता हूं कि विदितम्, यानी मैं ब्रह्म को जानता हूं। यहां जानता हूं कहने का अभिप्राय पहले जैसे जानता हूं ऐसा नहीं, यानी विषय तया नहीं जानता हूं, मैं के रूप में जानता हूं। ब्रह्म मुझे आत्मा के रूप में ज्ञात है, अनुभूत है, मैं के रूप में मैंने ब्रह्म का अनुभव किया है, और इसी अनुभव को अपने शिष्य द्वितीय मंत्र से आचार्य को बता रहा है। तो मैं ब्रह्म को अभी तक सम्यक अनुभव करने से पहले जैसा समझता था अपने से भिन्नतया, ऐसा नहीं समझता हूं। अपने सम्यक ज्ञान को इन शब्दों से आचार्य के सामने शिष्य बता रहा है कि नाहम मन्ये सुवेदेति नोन वेदेति वेदच। हे भगवान, मैं विचार करके परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने पर ऐसा मानता हूं कि ब्रह्म को मैं सुवेद नहीं समझता, यानी अपने से भिन्नतया विषयतया मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा मेरा ब्रह्म विषयक अनुभव नहीं है। ब्रह्म को ज्ञेय और अपने आप को उससे भिन्न ज्ञाता नहीं समझ रहा हूं। और तो क्या समझ रहे हो, फिर कैसे समझते हो? तो कहते नोन वेदेति, यदि नहीं ब्रह्म को सुविज्ञ नहीं मान रहे हो तो इसका अर्थ है अविदित होगा वो। तो कहते न वेद इति न, वो ना हम मन्ने सुवेद इति ये कह करके ये बता रहा है कि क्योंकि आपने विदित से ब्रह्म को अतिरिक्त बताया है तो मैं ब्रह्म को विदित नहीं मानता हूं, मैंने अपने से भिन्न विषयतया ज्ञात नहीं समझता हूं। तो क्या फिर अविदित समझते हो? तो अविदित से भी अलग ही ब्रह्म को मैं समझ रहा हूं। इसे नोन वेद इति मन्ने, इस वाक्य से कहा जा रहा कि न वेद इति न, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं ऐसी बात भी नहीं है। यानी जिस अनात्म वस्तु का किसी व्यक्ति विशेष को ज्ञान न हो तो वो समझता है, मानता है कि वो फलानी वस्तु मुझे अविदित है, ज्ञात नहीं है, ऐसे भी ब्रह्म को मैं नहीं मान रहा हूं, यानी अविदित नहीं मान रहा हूं, ब्रह्म मुझे अविदित भी नहीं है। नोन वेद इति इससे बताया कि ब्रह्म अविदित से अतिरिक्त है, और ना हम मन्ने सुवेदेति इससे बताया कि मैं जिस ब्रह्म के स्वरूप को जान रहा हूं वह ब्रह्म का स्वरूप विदित से भी अतिरिक्त है। विदित अविदित से अतिरिक्त एक आत्मा है, और उस आत्मा के रूप में मैं ब्रह्म को जानता हूं, वेद च इससे कहा। अभी तक यह इस रूप में जान रहा था, अब मैं अहम के रूप में, मैं के रूप में ब्रह्म को जानता हूं, वेद च इससे बता। स्वयं का बोध तो रहता ही है, तो मैं के रूप में मैं ब्रह्म को जान रहा हूं। और ये आचार्य को इसी प्रकार का ज्ञान अपेक्षित था। जब कभी भी ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान किसी को होगा तो मैं के रूप में ही होगा। भगवान गीता में कहते ही हैं, तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अधिकारी जो परमात्मा के परमार्थ स्वरूप के अधिकारी हैं, ऐसे लोगों पर अनुग्रह करके परमात्मा स्वयं ही उनके आत्मा के रूप में उनकी बुद्धि में अभिव्यक्त होता है, अर्थात अहम वृत्ति का विषय बन जाता है, और आत्मभावस्थ होकर के जो अज्ञान से अज्ञान रूपी तम है, अनात्मा शरीरादि में आत्मबुद्धि, उसका नाश करता है। तो वही गीता के भगवान कृष्ण जो आत्मरूप से प्रकट होते हैं बुद्धि में, वही तो यहां के विदित अविदित से अतिरिक्त ब्रह्म है, जिसका उपदेश किया जा रहा है। तो इस प्रकार इस द्वितीय मंत्र के पूर्वार्ध में शिष्य ने अपने वास्तविक स्वरूप का जो उसे अनुभव हुआ आचार्य के सामने रखा, इससे आचार्य भी संतुष्ट हुए, और यही सम्यक ज्ञान है। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान आत्मरूप से ही सम्यक ज्ञान है। इसे और सुदृढ़ करने के लिए परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति इसी रूप से हो सकती है, अन्य किसी रूप से नहीं, इसे दिखाने के लिए उत्तरार्ध में शिष्य बताता है कि योनस्तद्वेद तद्वेद नह, यानि आचार्य को शिष्य कह रहा है कि हम शिष्यों में से आपके, इसका अर्थ है कि आचार्य के अनेक शिष्य अध्ययन कर रहे हैं, उसमें से इस तत्व जिज्ञासु को बोध हुआ है, वह आचार्य को कह रहा है कि हे आचार्य जी, आपके जो हम लोग शिष्य हैं, उन हम शिष्यों में से जिस किसी भी शिष्य को यदि ब्रह्म का ज्ञान होता है, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, तो न यो, यानी हम शिष्यों में से जो कोई भी तद वेद, यानी आपके द्वारा उपदिष्ट अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इत्यादि वाक्यों के द्वारा बताए गए वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है, मेरे के मैंने जैसा अनुभव किया ऐसा, तो माना जाएगा कि वह सम्यक ज्ञानवान है, उसे ब्रह्म का ज्ञान है तद्वेद। तो वो किस रूप में जानेगा, तो कहते नोन वेदेति वेद च, मैं अविदित ब्रह्म को नहीं समझता हूं, विदित भी नहीं समझता हूं, किंतु अपनी आत्मा के रूप में ब्रह्म को जानता हूं, ऐसा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है जब कभी किसी को होगा उसका। इसे द्वितीय मंत्र में शिष्य ने इस प्रकार स्पष्ट किया। यहां तक ये गुरु शिष्य की के संवाद रूप से एक आख्यायिका को माध्यम बना करके वेद ने परमात्मा के वास्तविक स्वरूप तथा वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का निरूपण किया। अब श्रुति स्वयं गुरु तथा शिष्य के संवाद रूपी आख्यायिका से प्रतिपादित जो स्वरूप है उस स्वरूप का और ज्ञान का अपने मुख से निरूपण कर रही है, उपसंहार कर रही है। तो ये जो तृतीय मंत्र है, तृतीय मंत्र में द्वितीय खंड के यही सब चर्चा आ रही है कि श्रुति स्वयं यानी वेद अपने मुख से ये बता रहा है कि वास्तविक स्वरूप का ज्ञान जैसा यहां पर द्वितीय मंत्र में शिष्य ने बताया वैसा ही सम्यक ज्ञान माना जाता है। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। ये जो तृतीय मंत्र है ये न तो शिष्य के मुख से निकला हुआ वाणी है न तो गुरु का है। अभी तक के जितने भी प्रथम खंड में और द्वितीय खंड के दो मंत्र ये या तो शिष्य का वाक्य था या तो गुरु का वाक्य था। और प्रथम खंड में भी चौथे मंत्र से आठवें मंत्र तक तो ये पांच एक प्रकार से मंत्र थे, वो भी ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त अर्थ को दृढ़ करने के लिए आचार्य ने बताए हुए जैसे मंत्र थे। लेकिन ये जो मंत्र है यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः, इसे ये समझना ये तो न तो शिष्य बोल रहा है न तो गुरु बोल रहा है। वेद स्वयं वर्तमान तत्व जिज्ञासुओं को बता रहा है वेद ही कि यस्या मतम कहते हैं वर्तमान में जो व्यक्ति तत्कालीन शिष्य के तरह ही परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को अमत समझता है यानी अविदित समझता है, विदित नहीं समझता, मतलब विषय तया ज्ञात नहीं मानता। मतम का तो अर्थ होता है विषय तया ज्ञातम, सुवेद जिसको कहा पहले, और अमतम का अर्थ हो जाएगा विषय तया अज्ञातम, विषय तया ज्ञात नहीं है। तो वर्तमान में जिस किसी तत्व जिज्ञासु को परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप विषय तया ज्ञात नहीं है यानी अपने से भिन्न तया ज्ञात नहीं है लेकिन है ज्ञात किस रूप में, फिर तो आत्मा के रूप में, अपने से भिन्न तया नहीं लेकिन आत्मा के रूप में ज्ञान हो गया है जिसको और जिसकी तत्व जिज्ञासा शांत हुई है, ऐसे तत्व जिज्ञासु का जो तत्वबोध है वो तत्वबोध मतम यानी वो सम्यक ज्ञान है, वो वही वास्तविक ज्ञान होगा विदित अविदित से अतिरिक्त परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान जो आत्मरूप से ज्ञान है। और आत्मा को विदित यानी इस प्रकार विषयतया ज्ञात नहीं माना जाता। और जो अज्ञानी कौन है, विपरीत ज्ञानवान कौन है, तो कहते मतम यस्य न वेदसः। और जो व्यक्ति परमात्मा को मत यानी घटादि के तरह विषयतया ज्ञात मानता है, परमात्मा को मानता है कि जाना है परमात्मा को हमने और परमात्मा को जानने वाला मैं हूं, का मतलब स्वयं ज्ञाता है, परमात्मा ज्ञेय है और त्रिपुट्यात्मक ही ज्ञान जिसका है। मन में ही तादात्म्य अभिमान जिसका विद्यमान है और मन में जो एक उपास्याकार परमात्मा के स्वरूप की वृत्ति बनी है और उस वृत्ति को ही परमात्मा का ज्ञान मान रहा है, समझ रहा है और अपने आप को मनस्वरूप समझ करके उस वृत्त्यात्मक ज्ञान का आश्रय रूप ज्ञाता समझ रहा है, तो श्रुति कहती है कि वह न वेद, स न वेद का मतलब वो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, वह तो भ्रांत ही है, अज्ञानी ही है, अभी तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में से आत्माभिमान उसका निवृत्त नहीं हुआ है, क्योंकि श्रुति ये कहती है कि अविज्ञातम विजानताम। विजानताम का अर्थ है कि परम जानने वाले, यानी परमात्मा को आत्म रूप से जो जानने वाले हैं, परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव जिनको हो रहा है उनको परमात्मा विज्ञात नहीं है, अविज्ञात है। अविज्ञात है का अर्थ है विषयतया ज्ञात नहीं है, वो आत्म रूप से परमात्मा को जान रहे हैं तो वे परमात्मा को अपनी आत्मा मानते हैं न कि अपना विषय, जैसे घटादि को घटादि का ज्ञाता अपना विषय समझता है तो घटादि को विज्ञात मानता है, मया घट विज्ञात। ऐसे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का आत्म रूप से अनुभव करने वाले जो लोग हैं उन्हें परमात्मा का वास्तविक स्वरूप विज्ञात नहीं होता। विज्ञात नहीं होता का अर्थ वे ये नहीं मानते कि घटादि के ज्ञाता जैसे हम होते हैं ऐसे परमात्मा के स्वरूप के ज्ञाता हैं, परमात्मा का स्वरूप हमारा ज्ञेय है, हमारे ज्ञान का विषय है, इस रूप में परमात्मा के उस वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं करते वे, अविज्ञातम विजानताम। और विज्ञातम अविजानताम, और जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं कर पाए हैं वे हैं अज्ञानी। अविजानताम का अर्थ है अज्ञानी नाम, यानी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का आत्म रूप से जिन्हें अनुभव नहीं हो रहा है अपितु शरीरादि का ही आत्म रूप से अनुभव प्रतिपल जो कर रहे हैं, ये अनात्मा शरीरादि का आत्म रूप से ज्ञान ये भ्रांति है, इसलिए अभिजानताम का अर्थ है भ्रांतानां। ये अनात्मा शरीरादि का ही आत्म रूप से अनुभव रूप भ्रांति विपरीत ज्ञान जिनके बुद्धि में दृढ़ है, और ऐसे लोगों को परमात्मा विज्ञात है का मतलब आत्म रूप से ज्ञात है, वे आत्म रूप से ज्ञात नहीं मानते, ये विषयतया ज्ञात है उनको। तो विज्ञातम अभिजानताम में अभिजानताम का अर्थ है भ्रांत पुरुषाणाम, जो भ्रांत है अनात्मा को ही आत्मा समझ रहे हैं, शरीर आदि को और मन को मैं मान करके, और मन में जो अपने से भिन्न परमात्मा का ज्ञान है उसी ज्ञान को विषयतया ज्ञात समझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो परमात्मा विज्ञात है का मतलब विषयतया ज्ञात है ये माना जाता है, ये उनका असम्यक ज्ञान है। तो इस प्रकार यहां श्रुति ने वर्तमान तत्व जिज्ञासुओं को फिर सावधान किया कि देखो जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है उसे जब कभी यथार्थ रूप से अनुभव करेंगे तो आत्मा के रूप में ही अनुभव करना, न कि घटादि के तरह अपने से भिन्न के रूप में। इसलिए परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का पहले शास्त्र के अनुसार तत्व जिज्ञासु स्वरूप समझ ले ठीक से, शास्त्र जैसा बताता है का मतलब ठीक से पहले श्रवण करे, और जो आत्मज्ञान के उपाय के रूप में ही बताया जाता है ना कि आत्मावारे द्रष्टव्य और आत्मदर्शन, और आत्मदर्शन के उपाय क्या है तो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो आत्मा के परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसका प्रतिपादन करने वाले जो उपनिषद के वाक्य हैं उन वाक्यों का पहले अच्छी तरह से विचार करें, श्रवण करें, यही श्रवण है। और जब उपनिषदों का तात्पर्य निर्धारण हो कि उपनिषदों का परम तात्पर्य परमात्मा के परमार्थ स्वरूप निर्विशेष स्वरूप में ही है, निरुपाधिक स्वरूप में ही है, ये निर्धारण होने पर मनन और निधिध्यासन करें। और मनन निधिध्यासन से, इसलिए मंतव्य निधिध्यासितव्य कहा जाता है, और मनन कहा जाता है कि उपनिषद रूपी प्रमाण तो ये बता रहे हैं कि आपको आपका वास्तविक स्वरूप विदित अविदित से अतिरिक्त शुद्ध चेतन है, लेकिन हमारा जो अपना अनुभव है कर्ता भोक्ता के रूप में शरीर आदि के रूप में हमको दिखाने वाला, वो भी तो एक प्रमाण है। और उस अनुभव के साथ उपनिषदों के विरोध की प्रतीति हो, इसलिए संशय हो कि मैं उपनिषदें मुझे जैसा बता रही है वैसा हूं, या मेरा अनुभव मुझे जैसा बताता है वैसा हूं, ऐसा स्वरूप विषयक संशय हो जाए अपने ही। और संशय का हेतु है अपने अनुभव को भी और उपनिषदों को भी समान रूप से महत्व देने के कारण, यद्यपि अपने अनुभव को वस्तुतः होना चाहिए जो उत्तम अधिकारी होता है उपनिषदों को परम प्रमाण के रूप में लेता है, अपने अनुभव को तो व्यावहारिक प्रमाण के रूप में लेता है। तो मेरा व्यावहारिक स्वरूप भले ही मुझे जैसा मेरा अनुभव बता रहा है कर्ता भोक्तात्मक वह हो, लेकिन मेरा परमार्थ स्वरूप तो जैसा उपनिषदे बता रही है विदित अविदित से अतिरिक्त वैसा ही है, ऐसा निश्चय होने तक मनन करें। और फिर वो विपरीत भावना यदि है, विपरीत संस्कार है, अशुभ संस्कार है, तो उस संस्कारों को मिटाने के लिए निधिध्यासन, यही तो मीमांसम ते इस वाक्य से ये कहा कि तत्व जिज्ञासु को ये जब तक परमात्मा का आत्मरूप से ठीक से अनुभव नहीं होता तब तक श्रवण मनन निधिध्यासन रूप विचार करना ही है। और फिर जब परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा, आत्मरूप से अनुभव करने वाले आप होंगे, तो आपको श्रुति कहती है कि परमात्मा अभिज्ञात हो जाएगा। आत्मरूप से परमात्मा का अनुभव करने वालों को सामने परमात्मा नहीं दिखेगा, परमात्मा मय के रूप में अनुभव में आएगा। तो फिर आप अभिज्ञातम विजानताम इस वाक्यार्थ के कोटि में जाएंगे। और विज्ञातम अविजानताम ये वाक्य बता रहा है कि भ्रांत पुरुष तो परमात्मा को घटादि के तरह ही ज्ञात समझते हैं। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।